शौर्य गाथा।
श्रोताओं, कार्यक्रम शौर्य गाथा की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, कार्यक्रम शौर्य गाथा में आज हम ईरान इराक संयुक्त सीमाओं के बारे में इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम के दावों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने ईरान पर हमला करने की अपनी गलती को सही ठहराने के लिए सीमाओं से संबंधित सद्दाम के दावे का उल्लेख किया था और अलजज़ायर समझौते को फाड़कर फेंकने की घटना की ओर संकेत किया था। हालांकि ईरान पर हमला करने का उद्देश्य केवल सीमाओं से संबंधित दावा नहीं था। सद्दाम चाहता था कि क्षेत्र में अमेरिका के सबसे बड़े समर्थक के रूप में मोहम्मद रजा पहलवी के पतन के बाद ईरान की इस्लामिक क्रांति को उखाड़ फेंके और उसकी जगह ले ले। ईरान पर सद्दाम के हमले के एक साल बाद इराक के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री ताहा यासीन ने कहा था, ये युद्ध 1975 के समझौते या कुछ 100 किलोमीटर और आधी अरवंद नदी के लिए नहीं है, बल्कि इस युद्ध का उद्देश्य इस्लामिक क्रांति व्यवस्था का पतन है। इराक के इस उद्देश्य की गूंज पश्चिमी मीडिया में भी सुनाई दे रही थी।
जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड उडलक के हवाले से क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर अखबार ने लिखा, संभवतः इराक का एक उद्देश्य ईरान की इस्लामी व्यवस्था का पतन करना है। इराक क्षेत्र के अन्य देश और पश्चिम की बड़ी शक्तियां ईरान में इस्लामी क्रांति के पतन पर सहमत थे। इन शक्तियों का कम से कम ये उद्देश्य तो था ही कि ईरान के व्यवहार में बदलाव किया जाए। अमेरिका, पश्चिमी शक्तियां और फारस खाड़ी के अरब देश ऐसी योजना तैयार करना चाहते थे जिसे ईरान को नियंत्रित कर सकें। इस्लामी गणतंत्र को पश्चिमी देशों के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर कर सकें या उसे उखाड़ फेंके और क्रांति से पहले वाली स्थिति को बहाल कर दें। इसलिए कि ईरान की स्वाधीन नीतियां पश्चिम और अमेरिका के हितों से टकरा रही थीं।
अमेरिका ने भी यूरोपीय देशों के समर्थन से ईरान के खिलाफ कई कदम उठाए। ये कदम आंतरिक एवं बाहरी स्तर पर उठाए गए। घरेलू स्तर पर हंगामे कराना, अल्पसंख्यकों द्वारा गृह युद्ध शुरू करवाना और सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्तर पर बाएं बाजू के दलों को सक्रिय करना, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर इन शक्तियों ने ईरान को अलग थलग करने के लिए मनोवैज्ञानिक युद्ध छेड़े, कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए, ईरान की संपत्तियों को सीज किया, आर्थिक घेराबंदी की और इसी तरह तबस सैन्य ऑपरेशन की योजना बनाई। अमरीकी दूतावास पर ईरानी छात्रों के नियंत्रण की प्रतिक्रिया में अमरीका ने तबस पर हमला किया था। हालांकि तबस रेगिस्तान में अमेरिका का यह ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया।
ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता के बाद अमेरिका को सबसे गहरा घाव तेहरान में उसके कूटनीतिकों को बंधक बनाए जाने से लगा। इमाम खुमैनी का अनुसरण करने वाले छात्रों का मानना था कि तेहरान स्थित अमरीकी दूतावास अपनी कूटनीतिक गतिविधियों के बजाय जासूसी का अड्डा बना हुआ है और इस्लामी व्यवस्था का पतन करना चाहता है। छात्रों ने अपनी बात साबित करने के लिए अमरीकी दूतावास से मिलने वाले दस्तावेजों को प्रकाशित कर दिया। वास्तव में अमरीकी दूतावास ईरान में अस्थिरता फैलाने की योजना बना रहा था। इस सैन्य ऑपरेशन की नाकामी के बाद पश्चिम ने अमरीका के नेतृत्व में नई साजिशें रचना शुरू कर दी। ईरान पर इराक के हमले शुरू होने से 6 महीने पहले अप्रैल 1980 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीका की योजना से पर्दा उठाया था।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, तबस ऑपरेशन की नाकामी के बाद अमरीकी सरकार 3 महत्वपूर्ण सैन्य विकल्पों पर विचार कर रही थी। जिन शहरों में अमरीकियों को बंधक बनाकर रखा गया है वहां सैनिकों को उतारना, ईरान के तेल के कुओं और रिफाइनरियों पर बमबारी करना जैसी योजनाएं अमरीकी सरकार के विचाराधीन थीं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि अमेरिका को उम्मीद है कि ईरान पर आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिबंधों से ईरान और इराक के रिश्तों में और अधिक तनाव उत्पन्न होगा। पश्चिम में कुछ लोगों का मानना था कि एक शक्तिशाली देश से युद्ध की संभावना शायद ईरान को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दे।
ईरान इराक युद्ध शुरू होने से पहले वे एक ऐसी योजना पर काम करना चाहते थे कि अगर वो सफल हो जाती तो इस्लामी गणतंत्र का पतन हो जाता और अगर नाकाम रहती तो युद्ध को शुरू किया जाता। इसलिए 25 जून 1980 को ईरान की सेना के कुछ तत्वों के सहयोग से नकाब नामक तख्ता पलट की योजना तैयार की गई, लेकिन योजना पर अमल शुरू होने से पहले ही इसका भंडा फोड़ हो गया और अमेरिका को एक दूसरी अपमानजनक हार का मुंह देखना पड़ा।
सुरक्षा मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति कार्टर के सलाहकार ब्रजिंस्की ने उस समय कहा था, ईरान की क्रांति का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को उन देशों को शक्तिशाली बनाना चाहिए जो ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ सकते हैं। अपनी इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए ब्रजिंस्की ने खुफिया तौर पर जुलाई 1980 में जॉर्डन में सद्दाम से मुलाकात की थी।
व्हाइट हाउस की सलाहकार टीम के सदस्य गेरी सिक के मुताबिक इस मुलाकात में ब्रजिंस्की ने सद्दाम को यह आश्वासन दिलाने की कोशिश की कि वॉशिंगटन ने तेहरान पर हमले के लिए बगदाद को हरी झंडी दिखा दी है। फिगारो पत्रिका ने इस संबंध में लिखा था कि जून से इराक और ईरान युद्ध के लिए उस समय से कोशिशें शुरू हो गई थीं जब ब्रजिंस्की ने जॉर्डन की यात्रा की थी और जॉर्डन इराक सीमा पर सद्दाम से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अमरीकी राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार ने सद्दाम के समर्थन का वादा किया था।
ब्रजिंस्की ने सद्दाम से कहा था कि अमरीका अरवंद नदी के बारे में इराक की योजना और इस इलाके में एक अरब देश की स्थापना का विरोध नहीं करेगा। इस मुलाकात के बाद जिमी कार्टर ने इराक को 5 बोइंग विमानों के बेचने की अनुमति दी थी और ईरान पर हमला शुरू होने से कुछ दिन पहले ही बगदाद पर जनरल इलेक्ट्रिक के मोटर बेचने पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया। इराक के संबंध में अमेरिका की ये नीतियाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उस समय बगदाद पूर्वी ब्लॉक में शामिल था और उसे USSR का समर्थन प्राप्त था, अर्थात अमेरिका जो भी सद्दाम के साथ सहयोग का फैसला करता वो सोवियत संघ की सहमति से होता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व की दो महाशक्तियों के बीच ईरान के खिलाफ ये अभूतपूर्व समन्वय था। अमेरिका ईरान की इस्लामिक क्रांति की दुश्मनी में अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार था, इसलिए कि उसकी नज़र में केवल इराक ऐसा देश था जो ईरान से भिड़ सकता था।